विद्यते बोलिए हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनि ईश्वरे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सब लोग ठीक से बोलिए विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
विद्यन्ते हृदय ग्रंथि
विद्यन्ते सर्वसंशया
क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि
दृष्ट
एवात्मनीश्वरे। बोलो माता जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो
बोलो चिंतन्ते हृदय ग्रंथि
विद्यन्ते हृदय ग्रंथि
छिद्यन्ते
सर्वसंशया
क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि
दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
और कोई बोलेगा
हृदय
ग्रंथि
छिद्यन्ते
सर्वसंशया
क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि
दृष्ट
एवात्मनीश्वरे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, इस प्रकार हृदय की गांठ बिर जाती है और सारे संशय छिन्न विच्छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की सभी श्रृंखलाओं से वो मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ साथ ही अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मरूप में जीव के पहचान की बात है, उस संबंध में अनेक कल्पनाएं हैं। भौतिकतावादी लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते और किंतु आध्यात्मिकवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्याएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है लेकिन परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है किंतु जब भी भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकतावादी तत्व वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है तो ही परम सत्य और जीवात्मा संबंधी सभी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रहता, अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा के रूप में सत्य हृदय में वास करने वाले श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से ही प्रकट हो जाता है। भगवद गीता में 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, सारे संशयों के अंत गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय का प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं वे अंधकार में नहीं रह सकते, उन्हें परम तथा सापेक्ष सत्य की विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण हो जाता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता, पूर्ण ज्ञान जो है वो परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। ये एक अधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है जो सेवा और समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। ऐसा ही नहीं, कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उसे भी जान ले, उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो जो परम पूर्ण क्षुद्र सुपुल्लिंग मात्र है। बहुत भयंकर हिंदी है, इतनी भयंकर हिंदी है कि इसको समझाने के लिए क्लास देना पड़ेगा, लेकिन इसका सार मैं आपको बताऊंगा। चूंकि मायावादी लोग ऐसी क्लिष्ट भाषा लिखते हैं इसलिए ज्ञान सामान्य जनता तक पहुंचता नहीं है, इतनी अगर भयंकर भाषा में लिखेंगे तो किसके समझ जाएगा, हिंदी का पंडित भी होगा तो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को चैलेंज करता है उसके सामने प्रकट न होने का अधिकार भगवान को है, जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है ऐसे व्यक्ति को के सामने न आने का न प्रकट होने का स्वतंत्र भगवान के पास है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि जीव जो है
उसको
बंद करो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त नम्र होते हैं उनको ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जो भक्त नम्र नहीं होते हैं अहंकारी होते हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो भक्त नम्र होते हैं उनको ही अंतःकरण में स्थित भगवान से सहायता मिलती है, और दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने की यही सही विधि है जिसके द्वारा नम्रता से हम ज्ञान प्राप्त करें। इसी अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ यानी भौतिक वस्तु और आत्मा यानी आध्यात्मिक वस्तु, इसका अंतर जो है भक्त समझ पाता है जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान के द्वारा खोली जाती है। इसी ग्रंथि को जो लिखा है ना बिंदते हृदय ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या है, अहंकार, इस ग्रंथि को अहंकार कहा गया है। इस अहंकार की वजह से जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है, मतलब अपने आप को शरीर मानता है वो दिव्य वस्तु, हम आध्यात्मिक वस्तु, लेकिन वो अपने आप को पदार्थ मान लेता है। पदार्थ यानी मरने वाली वस्तु शरीर। जो ही ये ग्रंथि अहंकार ढीला पड़ जाता है, संशय के सारे बादल छूट जाते हैं, मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करता है और सकाम कर्मों के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इनके अच्छे और बुरे कर्मों के फल में फंसा रहता है, क्योंकि जो ही वो भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है उसी समय वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर उसे कर्मों में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। बहुत कठिन है क्या समझ में? तो समझ में आपको आया क्या? क्या समझ में आया एक लाइन में बता दीजिए आप, अगर जो भी समझ में आया।
हमारे हृदय की जो ग्रंथि है वो अहम है, अहंकार, तो उसके कारण हम खुद को गिनावता का ही स्वामी मानते रहते हैं, तो अपने आप को भौतिक वस्तु मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, जो हम है नहीं, हम दिव्य हैं। तो जैसे ही हम ये सब जब हम ये समझें कि हम शरीर नहीं है, तो ही हमको हमें अपने मालिक का दर्शन होगा और हम दिव्य पर आगे बढ़ेंगे।
हाँ बोलिए, आपको क्या समझा? मैं आपको बताऊ ना, आपके भाषण बताओ। हरे कृष्ण। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हम सब लोगों की, वो है अविद्या। अविद्या यानी जो सही विद्या है वो कहती है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और अविद्या का मतलब है कि हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम ब्रह्मास्मि अहम मामेति। हम ब्रह्मास्मि मतलब हम ब्रह्म है, भगवान के अंश है, ये सही ज्ञान है, इसको सही विद्या कहते हैं। और अविद्या उसको कहते हैं जिससे हम समझते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, इस मरने वाले शरीर को अपना मानना अविद्या का है, और इस मरने वाले शरीर से बहुत प्रेम रखना और बहुत आसक्ति रखना, इसको ये गांठ कहा गया है, गांठ, हृदय ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार यानी भगवान को भूलकर पदार्थ को अपना समझना, पदार्थ यानी जो नष्ट होने वाला है, जो नश्वर है उसको अपना समझना, उसको स्वयं समझना, इसको अहंकार कहते हैं। और इस अहंकार के कई परिणाम हैं, कई परिणाम हैं। इस अहंकार के वजह से तीन गुणों का प्रभाव हमारे पर होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस अहंकार के वजह से आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, ये तीन प्रकार के तकलीफ में हमको होते रहती है। गर्मी सर्दी का तकलीफ होता है, किसी अन्य जीव के द्वारा हमको कष्ट होता है और अपने द्वारा भी कष्ट होता है, पता है पेट खराब है लेकिन हम फिर भी खाए जा रहे हैं, तो अगले दिन दस्त लग जाते हैं, अपने द्वारा ही कष्ट होता है। पता है कल एग्जाम है फिर भी आज पिक्चर देख रहे हैं तो फेल हो जाते हैं, ये अपने द्वारा कष्ट है। कुत्ता काटता है, बंदर काटता है, पड़ोसी तकलीफ देता है, और कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती है, कभी बहुत वर्षा होती है, तो तूफान आता है, आंधी आती है, भूकंप होता है, यह नैसर्गिक की आपत्ति है जो देवों द्वारा होती है, देवताओं द्वारा। केवल एक अहंकार के वजह से ये तीनों प्रकार के कष्ट हमको होते रहते हैं। इसके आगे जाकर इस अहंकार की वजह से जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये चार कष्ट भी होते रहते हैं। चाहे वो देवता हो, चाहे वो अमेरिका का अध्यक्ष हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, जन्म मृत्यु सबको लगा हुआ है, बुढ़ापा सबका लगा हुआ है। हाँ, जाड़ी सफेद थी अभी गोरी हो गई, होना ही है। समय का प्रभाव भी हमारे पर होने लगता है अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से हम भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं और इसी अहंकार की वजह से हमारे ऊपर कर्मों का बंधन भी लगा रहता है, क्योंकि अहंकार के वश हम कार्य करते हैं, उस कार्य का फल होता है अच्छा और बुरा, उसको भूगने में जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, अनेक जीवन निकल जाते हैं, क्योंकि वो कर्म जो है वो समाप्त नहीं होते, बार 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 आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु होती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर बीमारी हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये ऐसा प्रकाश है जो जीव को इस अहंकार की गांठ से मुक्त कर सकता है। तो उसमें क्या दिया है पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन ये पिछले श्लोक जो हैं कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्लोक जो है पीछे है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसको हमको याद करना चाहिए, और क्या इस श्लोकों में बताया गया है उसको भी हृदय में लिखना चाहिए, हाँ पेपर पे नहीं इधर लिखना चाहिए। वो क्या है, सबसे पहला श्लोक तो है, इसमें लिखा गया है कि महात्माओं की सेवा करने से हमको भगवान के बारे में सुनने में इच्छा उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है, हमारे में पहले से भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन संतों की सेवा करने से भगवान के विषय में सुनने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, बहुत जरूरी है। इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो तो सुनेंगे कैसे आप, हमको इच्छा सुनने की क्या है, पिक्चर में क्या चल रहा है, शाहरुख खान क्या कर रहा है, तेंदुलकर क्या कर रहा है, हाँ शिल्पा शेट्टी क्या कर रही है, अमेरिका का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, इसमें हमको इंटरेस्ट है, लेकिन भगवान के बारे में सुनने का इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले जाने अनजाने में क्यों ना हो साधुओं की महात्माओं की सेवा करना चाहिए। जब साधुओं की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से, उस सेवा की कृपा से हमें भगवान के विषय में सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो फिर हम सुनते हैं भगवान के विषय में। भगवान के विषय में सुनने से क्या होता है, भौतिक दुनिया में रहकर भौतिक दुनिया का आनंद लेने का जो इच्छा है वो नष्ट हो जाता है। आप बोलेंगे नष्ट करने की जरूरत क्या है, इतनी बढ़िया भौतिक दुनिया दे दी है भगवान ने हमको, भोगने को दी है, और आप बोल रहे उसका इच्छा नष्ट होना चाहिए, ऐसे कैसे। ये भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया का भोग लेने का प्रयास करने से क्या होता है, बार बार धक्का खाने के लिए जीव आते रहता है अनंत जन्मों के। समझते नहीं हम, जब हम भोग लेते हैं तो ये समझते नहीं कि हमारा क्या होने वाला है, भोग लेने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भोग लेने से क्या होता है, निरंतर कर्मों के बंधन में हम बंध जाते हैं। इसलिए जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो क्या होता है, भोग लेने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, हमको प्रवचन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि वहां जाने से भोग लेने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। हमारे पास के डॉक्टर ऐसे हैं भक्ति विधान में, सब मानते हैं, ये भी जानते हैं कि सब कैसे सही कर रहे हैं, लेकिन आते नहीं वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम आएंगे तो हमारा बिजनेस करने का जो प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाएगा, हमारा धंधा करने का जो प्रवृत्ति है, पेशेंट देख के पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति है वही खत्म हो जाएगी, इसलिए हम आना नहीं चाहते, दूर से प्रणाम करते हैं लेकिन कथा में नहीं आते, वो डर लगता है कि कहीं विरक्ति आ गई तो फिर क्या होगा। तो ये भी अविद्या है, ये भी मूर्खता है। जो हाथ से छूटने वाला है, एक दिन तुम्हारे से सब कुछ छीना जाएगा, उसी पर लगाव बनाए रखें, उसी पर दिल लगाए रखें, और ये जानते हैं कि मरने के समय सब छूट जाएगा फिर भी उसी के पीछे लगे हुए। इसलिए डॉक्टर पीएचडी इंजीनियर होने से कोई मतलब नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि दिल कहां लगाया जाए, जो टूटने वाला है वहां लगाया जाए कि जो बने रखने वाला है वहां लगाया जाए, शाश्वत में लगाया जाए कि खत्म होने वाले वस्तु में लगाया जाए, ये सही बुद्धि है। हम पीएचडी बनने से वो बुद्धि प्राप्त नहीं होती, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा दिल हमको कहां लगाना है, और कहां लगाने से हमको सही शांति मिलेगी, और वो एक ही वस्तु है, वो है भगवान। केवल उन पर दिल लगाने से मनुष्य सुखी हो जाता है। तो आगे क्या कहते हैं कि जब नित्य रूप से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ रहे हैं और एक व्यक्ति भागवत जो इस भागवत को जीवन में उतारता है, उसको भी भागवत कहा गया, महाभागवत कहते हैं। या तो व्यक्ति भागवत या तो ग्रंथ भागवत दोनों में से किसी की भी एक सेवा करना है, या तो ग्रंथ भागवत पढ़ना है और इसमें क्या लिखा है कि महात्माओं की सेवा करना है, मतलब महाभगवत की सेवा करना है। इससे क्या होता है, प्रायः नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्राय इशु मतलब ऑलमोस्ट 99.99% सब जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है। अनर्थ का मतलब क्या है, अनर्थ का मतलब काम वासना, द्वेष, लोभ, मत्सर, लोभ, क्रोध, उसको अनर्थ कहा गया है। कि हमारे अंदर बैठे हुए दुश्मन है, ये अंदर घर घर करके बैठे हुए हैं, बहुत गहराई में बैठे हुए हैं, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन श्रीमद् भागवत को सुनने से ये सारे अनर्थ जो है प्रायः नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, श्रीमद् भागवत के सुनने से प्रेम भक्ति का उदय होता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का उदय श्रीमद् भागवत के सुनने से होता है। फिर क्या कहा गया है कि जब प्रेम भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है तो रजगुण और तमोगुण का परिणाम नष्ट हो जाता है। रजगुण तमोगुण का परिणाम क्या होता है, काम वासना, भौतिक वस्तुओं का भोग लेने की इच्छा, तड़पना उनके लिए, खो जाने पर दुखी होते रहना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, ये दुनिया केवल दो प्रकार के लोगों की है, एक वो लोग जो कुछ खो गए हैं उनके बारे में रो रहे हैं, और एक वो लोग जो उनको अब तक प्राप्त नहीं हुआ है रो रहे हैं। जैसे कि जो कुमारी कन्या है रो रही है शादी नहीं हो रही है, पति नहीं मिल रहा है, और एक विधवा औरत रो रही है अरे पति मर गया, मतलब एक खोया इसे रो रहा है, एक नहीं मिला इसे रो रहा है। आप सोचिए हम लोग दोनों में से एक ही कोई है या दोनों है, ये भौतिक दुनिया का सार है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये भौतिक दुनिया में जो भगवान को भूल कर रहता है उसका दो ही लक्षण है, या तो वो कुछ पाने के लिए रोते रहता है, या तो पाया हुआ खो गया इसलिए रोते रहता है। बस यही दुनिया है सब कुछ। जब भगवान से जुड़ जाता है तो ही उसको असली खुशी प्राप्त होती है, वो शांत हो जाता है। फिर क्या लिखा गया है, तो भगवान की प्रेम भक्ति हृदय में स्थापित होने के बाद रजोगुण तमोगुण का परिणाम जो है वो नष्ट हो जाता है, भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, सत्व गुण हृदय में निर्माण होता है, और सत्व गुण आते ही क्या होता है, सबसे पहले सत्व गुण आते ही आनंद का अनुभव होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्नता का अनुभव करता है। सत्व गुण बहुत जरूरी है, जब तक सत्व गुण नहीं है तब तक आदमी तड़पता रहेगा, दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, कुछ ना कुछ क्रोध करता रहेगा, इसलिए द्वेष करता रहेगा, कुछ प्राप्ति नहीं हुई फिर रोता रहेगा। ये रजोगुण तमोगुण का लक्षण है। सत्वगुण का लक्षण है आनंद, ज्ञान, क्षमा, दया, शांति, सेवा, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो जैसे प्रेम भक्ति हम करने लगते हैं, प्रेम से भक्ति करने लगते हैं भगवान की, हृदय में आनंद स्थापन हो जाता है, सत्वगुण निर्माण होता है। और क्या होता है, जीवन में पहले बार खुशी का अनुभव होता है, वो खुशी जो समाप्त नहीं होने वाली है। बाकी तो 10 रुपए 1000 रुपए पगार बढ़ गया तो भी खुशी होती है, लेकिन 2 महीने बाद खत्म हो जाती है, फिर कभी और 500 बढ़ेगी इसके लिए इच्छा होती है ना। ये सब खुशियां जो है ना, दिवाली आ गई पटाखे फोड़े तो अच्छा लगता है, दिवाली समाप्त हो गई दुख हो जाता है, छुट्टी है 10 दिन की, कुछ स्ट्राइक हो रहा है तो बहुत खुशी होती है, और स्ट्राइक खत्म काम चालू हो गया तो दुख हो जाता है। ये खुशी की बात नहीं है, हम वो खुशी की बात कर रहे हैं जो आत्मा की जरूरत है, जो आत्मा खोज रही है, जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा का स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, उस खुशी की हम बात कर रहे हैं जो हर जीव को आवश्यक है, लेकिन पता नहीं है, ढूंढ रहा है कहां मिलेगा कहां मिलेगा, गलत जगह पे ढूंढ रहा है, नीम के पेड़ पर आम का फल ढूंढ रहा है। पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, किधर भी जाओ, नीम के पेड़ पे आम का फल नहीं मिलता, नीम के पेड़ में केवल नीम का कड़वा फल मिलता है, पत्ते मिलते हैं। तो इस तरह से आनंदमय स्थिति में जब जीव भक्ति करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। जब सत्वगुण में आकर जब जीव भजन करता है तो भगवान उसके हृदय में ज्ञान देते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल का ज्ञान की बात नहीं कर रहे, जो वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान जीव को होना चाहिए, जो ज्ञान को जीव खो चुका है, जिसके खोने पर वो दुखी हो रहा है, कष्ट भोग रहा है, बार बार जन्म लेकर लड़प रहा है, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान यानी आत्मा का और भगवान का ज्ञान, जो शाश्वत ज्ञान है, जो जीव को तारने वाला ज्ञान है, जीव को मुक्त करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान भक्ति करने से भगवान भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, यानी कि हम बाहर से उस ज्ञान को अंदर डालते नहीं है, वो अंदर से भगवान उसको देते हैं। इसको अवरोह कहते हैं। आरोह यानी बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग बांधने का, मेंटेनेंस का, इसका उसका जो ज्ञान है वो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये ज्ञान वो है वो हृदय से पता होता है। हृदय हम लोग कौन है, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, क्या करने से रिश्ता जुड़ जाएगा, क्या नहीं करने से, क्या क्या करने से जुड़ जाएगा और क्या करने से टूट जाएगा, इसको ज्ञान कहते हैं। और चाणक्य पंडित जो है वो ज्ञान की बड़ी अच्छी बात है, एकदम प्रैक्टिकल व्याख्या है, आप सब लोग इसको समझ लीजिए और लिख भी लीजिए अगर अच्छा हो तो। वो कहते हैं कि वो ज्ञानी व्यक्ति जो है, इसको ज्ञान हो गया है, उसका क्या लक्षण है, वो पराया धन जो है वो मिट्टी के समान समझता है। लोग क्या करते हैं, पराया भी हमारा विषय हमारा, जहां काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, जितना हो सके उतना बटोर लेते हैं विदेश में, जो हमारा नहीं भी है वो भी ले लेते हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति नहीं, पूर्ण अज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि वो जानते नहीं है कि पराया धन लेने से कितना नुकसान होता है और कितना दुख भोगना पड़ता है, इसको पता नहीं। अभी खाली मजा आ रहा है उसको, रोज 15,000 रुपया निकाल लेंगे। हम लोग जमीन लेने गए थे उधर, तो एक एक रजिस्ट्री के ऊपर 1% लेते हैं, 50 लाख की रजिस्ट्री हुई 50,000 ले लेते साइन करने के, ऊपर से नीचे तक सब लोग, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, सब जगह पे। दवाई की मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर भी हर दवाई को साइन करने के लिए, नकली दवा को साइन करने के लिए पैसा ले लेते, कस्टम की वस्तुओं को निकालने के लिए पैसा ले लेते। लेकिन ये सब लोग जानते नहीं कि कितने जन्म जन्मांतर के दुखों का वो तैयारी कर रहे हैं। दे डोंट नो कि पराया धन जो है, जो हमारा नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो एक कौड़ी भी लेना कितने आगे के दुखों का बीज बो रहे हैं लोग, जिनको जानते नहीं हैं। इसलिए पुराने जमाने में कितने अच्छे लोग थे जो अंगूठा छापते, लेकिन वो असली ज्ञानी थे, वो कभी भी दूसरे के पैसे को हाथ नहीं लगाते, लौटा देते थे तुरंत, और कभी भी किसी के पराये धन को कितना भी देने पर लेते नहीं थे उसको। वो जो अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है उसी में अपने आप को धन्य मानते थे और खुशी मानते थे। आज हमारा प्रवृत्ति क्या है कि जो हमारा नहीं है वो हमारा होना चाहिए, वो जो तुम्हारा है वो हमारा होना चाहिए, इसके लिए गोली चलाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा है वो मेरा होना चाहिए इस भावना से। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो कुछ मिलता है वो कर्मों के प्रभाव से मिलता है, हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार मिलता है और उसमें हमको संतुष्टि माननी चाहिए। मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, उससे ज्यादा क्यों मिल रहा है, ये सोचना जो है ये अनंत काल के दुख का बीज है, केवल दुखी देता है। इसलिए गवर्नमेंट के ऑफिस में, कस्टम के ऑफिस में जहां जहां इधर अधिकारी बैठे हैं, कभी सुखी रहते नहीं, उनके घर में बच्चे नशा करते हैं, फेल हो जाते हैं बार बार, लड़कियां भाग जाती हैं, उनको कैंसर हो जाता है, रोग हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर कैंसर जिसको होता है वो पापी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ये लोग जो पापी होते हैं वो आगे जाकर दुख में कष्ट में कभी शांति नहीं प्राप्त करते, कभी भी नहीं शांति प्राप्त करते। हम सोचते हैं कि हम अधिक धन प्राप्त करने से शांति प्राप्त करेंगे, तो टेंशन नहीं होगा ऐसा हमको लगता है, लेकिन पराया धन सारे आने वाले टेंशन का बीज रहता है, सारे जो आगे जो खाएंगे उसका बीज पराया धन में। तो चाणक्य पंडित कहते हैं पराया धन जो मिट्टी के समान मानता है वो असली ज्ञानी व्यक्ति। सेकेंड लक्षण उसका ऐसा है परस्त्री मातृवत, मतलब जो अपनी स्त्री के अलावा हर कन्या को, हर माता को, हर स्त्री को माता मानता है, वो असली ज्ञानी है। आज क्या कहते हैं, हमारी पत्नी के साथ में बाकी सब औरतों को हमारी पत्नी के समान मानते हैं और उनका भोग लेना चाहते हैं। ये अनंत कर्मों का और अनंत पाप कर्मों में फंसने का एक अच्छा मार्ग है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो है, यीशु क्रिस्त भी कहते हैं कि जो पराई स्त्री को अपनी भोग्य वस्तु समझता है वो नरक में जलता है, उसकी आंखें भी नरक में जलती है, ऐसे जीसस क्राइस्ट ने कहा है। किसी भी अन्य वस्तु को जो हमारे अधिकार में नहीं है उसको भोगने की इच्छा करना, यानी कि नरक में यातना का बीज बोना। इसलिए जो हमको मिला है, जो भोगने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है, सोने को मिलता है, उसी में समाधान मानना चाहिए। उसके आगे जाकर जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको पाने का जब हम खरोचने का प्रयास करते हैं तो उससे हमको केवल दुख प्राप्त होता है, केवल सुख का आभास रहता है, मिलेगा मिलेगा, क्योंकि अभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और तीसरी ज्ञान का लक्षण यह है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को वह अपने जैसा मानता है और अपने से व्यवहार करना उसको जैसा पसंद आता है वैसे ही व्यवहार हो दूसरों से करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब क्या है कि बंदर हो, पंछी हो, सांप हो, पेड़ हो और मनुष्य हो या जानवर हो, सबको वो भगवान का बालक मानता है, समझता है कि भगवान के बालक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ममैव वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, सबके जीव में भगवान को देखता है, सबके हृदय में, सब जीवों के, और सब जीवों को भगवान का अंश मानता है, वो वरुष ज्ञानी पुरुष माना गया। और ऐसे ज्ञानी पुरुष को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। जो पराई स्त्री को माता मानता है, पराई धन को मिट्टी मानता है और सब जीवों को भगवान का अंश मानता है, उसे कभी भी दुख नहीं होता है। कहने को छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। दुनिया केवल एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है, पराए धन को अपना मानती है, हर पराए स्त्री को अपनी भोग्य मानते हैं और अपने साथ में आदर का व्यवहार, सबके साथ में अनादर का व्यवहार करते हैं, अपने साथ में केवल स्वार्थ का व्यवहार, सबके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। हमको इसी से ऊपर उठना है। शास्त्र कोई ऐसी बहुत क्लिष्ट बात नहीं है, ये शास्त्र जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, इसको जीवन में उतार सकते हैं, इसके ऊपर चल सकते हैं, जीवन में समझना चाहिए, उसके लिए संतों की सेवा करना जरूरी। तो ये जो सही ज्ञान है जिसकी बात अभी इस श्लोक में वो बात हो रही है, ये एक लाइन बाकी है, फिर हम इस श्लोक पर आएंगे। लास्ट लाइन क्या है, उसी व्यक्ति को जो शांत मन में, आनंदी मन में भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान से क्या होता है, हृदय की जो ग्रंथि है वो कट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते क्या सर्व संशय, जितने भी संशय है, डाउट्स हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्या डाउट है हमारा, क्या हम भगवान के अंश है, क्या भगवान है, क्या दुनिया में खुशी मिलने वाली है, क्या मरने के बाद में क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होगा, हम कहां जाएंगे, बहुत सारे डाउट हमारे मन में रहते हैं। ये भगवान का नाम जप करने से क्या मिलेगा, इसके अंदर कोई दम है क्या, ये भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, अन्न में क्या फर्क पड़ता है, ये सारे संशय मन में होते हैं। दो घंटा माला करने से क्या होने वाला है, ये भी संशय होता है। मंदिर में क्यों जाना चाहिए, उससे अच्छा काम की जगह बेटा काम करो, ये भी संशय होता है। क्यों कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने से किसका भला हो गया, ये भी संशय होता है। ये सब प्रकार के संशय जो जीव के विनाशकारी संशय होते हैं, ये सब जो है भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से नष्ट हो जाते हैं। छिन्दन्ते सर्व संशय, और क्या होता है, छिन्दन्ते चास्य कर्माणि, हम लोगों के जीवन में जो कर्म के बंधन फंसे लगे हुए हैं, कर्म फलों के, वो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ये कर्म फल जो है ना, ये हमको बार बार यहां बुलाता है। जो कर्म पीछे किए हैं उसको भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है। कभी कभी इतने कर्म होते हैं कि इस जीवन में पूरे नहीं होते, तो बचे हुए कर्म को पूरा करने के लिए और जन्म देना पड़ता है। फिर नए जन्म में और कर्म करते हैं, पुराने वाले भोगते भोगते नए भी कर्म करते हैं, तो उसको भोगने के लिए दोबारा आते हैं। ये अनंत श्रृंखला है, चेन है, चेन लंबी, इससे हम बच नहीं सकते। केवल भक्ति यही मार्ग है, बिना भक्ति के ये कर्म की श्रृंखला कट नहीं हो सकती। तो जब भगवान के द्वारा उनकी प्रेम भक्ति करने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये कर्म फल श्रृंखला जो है वो नष्ट हो जाती है। आज का श्लोक ये बताता है। आज का श्लोक बताने के लिए ये सब बताना जरूरी था कि ये कैसे बना। आखिर में अगर कर्म फल की श्रृंखला से मुक्त होना है तो शुरुआत कहां से हुई थी? साधुओं की सेवा से। साधुओं की सेवा नहीं करते हैं तो मनुष्य जीवन बेकार है। अपनी सेवा करने रहेंगे तो मनुष्य जीवन में हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। स्वार्थ से मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करने से सब प्रकार के जो इष्ट हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऑफिस में हम लोग ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो सेवा कई प्रकार की होती है, क्योंकि वो नौकरी समझते कर सकते हैं कि चलो हमारी पगार मिल रही है, 8 घंटा सेवा करो, या तो उसको बड़ी करुणा के साथ कर सकते हैं, प्रेम के साथ कर सकते हैं, प्रयास से कर सकते हैं। मतलब कर्तव्य के दायरे के आगे जाकर, एक है कर्तव्य, ड्यूटी है अपनी, वो और एक है वो भावना जिससे हम कर्तव्य के भी आगे चले जाते हैं। मनुष्य जो है ना वो चार प्रकार के लिए काम करता है। एक काम ऐसा करता है जो तो डर है उसको, डर कि नहीं करूंगा डंडे पड़ेंगे या निकाल ले जाएंगे नौकरी से, तो डर से वो काम करता है। ठीक है, एक पहला जो लेवल जो है काम करने का वो डर के मारे काम करता है, और दूसरा काम जो है, दूसरा लेवल का काम जो है वो फल के लिए काम करता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी या बख्शीश मिलेगा या कोई प्रमोशन मिलेगा, लाभ के हेतु करता है, प्रॉफिट। उससे भी ऊपर का स्टेज जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो कर्तव्य समझ के करता है। जैसे कि माता होती है ना, पिता माता होते हैं, वो उनको तनख्वाह मिलती है क्या? नाइट ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वो सबमिट करते हैं पेपर पिताजी के पास, पिताजी कल 3 नाइट ओवर टाइम किया बच्चे के लिए, 10 तो रहे थे बच्चों को, तनख्वाह दे दो उसकी। ऐसा करते हैं माता कभी करती है? नहीं करते कभी। वो कर्तव्य है उसके मन में। कोई लोग देश के लिए काम करते, कोई समाज के लिए काम करते, कोई जाति के लिए काम करते, पैसे से या लाभ के हेतु से प्रेरित होकर काम नहीं करते। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो काम बताया गया है वो प्रेम की वजह से जो करता है वो श्रेष्ठ काम बताया है। ना डर के मारे करता है, ना लाभ के मारे करता है, ना कर्तव्य के मारे करता है, केवल प्रेम से करता है। वो मां का प्रेम जो है, वो मां का जो सेवा है वो उस लेवल पे आता है। वो बालक के प्रेम की वजह से उसकी टट्टी पेशाब भी निकलती है, वो बालक की टट्टी पेशाब को उसको बदबू भी कोई जाती नहीं, ऐसे शास्त्र में लिखा है। और कभी भी देखा आपने, ऐसे कहते हैं कि जब माता किसी बालक को बड़ा करती है तो कम से कम 1 किलो तो उसकी विष्ठा खा जाती है। वो दीवार हाथ लगाती है, उसे धोती है तो कई बार उसके मुंह में चला जाता है। एक बालक को बड़ा करने में कई ग्राम, कई किलोग्राम विष्ठा बालक की मां खा जाती है बिना जाने हुए। और कभी दिन रात, कभी 7-8 दिन, 8-8 दिन बिना खाए पिए उसकी सेवा में रहती है, केवल प्रेम की वजह से। और वो प्रेम हम कुत्ता बिल्ली बंदर में भी देखते हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं देता है बालक को संभालने के लिए, लेकिन बालक के प्रेम की वजह से वो सेवा करते रहते हैं। उनको हम, उनसे हमको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हमारा जो काम है, जो हमको करना है, वो केवल डर के मारे करेंगे तो वो जानवर की तरह हो गया, लाभ की तरह करेंगे तो फिर वो रजोगुणी हो गया, वो कर्तव्य करेंगे तो अच्छा है। लेकिन श्रेष्ठ काम करने का जो तरीका है जो भगवान को भी आकर्षित कर लेता है वो है प्रेम। प्रेम से जो काम करता है उसके भगवान हो जाते हैं। एक नर्स थी जिसका नाम था मार्गरेट, और ये हमारा जो हॉस्पिस है वैसा ही हॉस्पिस में काम करती थी। तो सुबह वो उठकर जब उठती नहा धोकर प्रार्थना में बैठा थी, और प्रार्थना में बैठकर जितने भी मरीज उसके अंडर हैं, ये 10 मरीज होंगे, 8 मरीज होंगे, 8 बिस्तर उसके दिमे होंगे, उस पर 8 मरीज होंगे, हर मरीज के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती थी। सुबह उठकर एक एक के लिए बैठकर प्रार्थना करती थी, फिर तैयार होकर हॉस्पिटल में आती थी, हॉस्पिस में फिर एक एक मरीज की सेवा करती थी, है ना, उसका जो ड्यूटी है। अभी हर एक मरीज की जो सेवा हो रही है, पट्टी लगाई जा रही है, सलाई लगाया जा रहा है, कुछ दवाई दिया जा रहा है या और कुछ किया जा रहा है, जो वो काम कर रही है हर एक मरीज के लिए, वो करते करते वो हृदय में मन में उस मरीज के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। मतलब हाथ से काम कर रही है और हृदय में उसके लिए प्रार्थना कर रही है। फिर 7-8 घंटा काम करने के बाद जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तब वो घर पे जाती थी, घर पे जाकर हाथ पांव धोके फ्रेश होकर फिर प्रार्थना में बैठती थी, और जिन मरीजों की 8 मरीजों की 10 मरीजों की सेवा की, उन सब मरीजों के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती थी। इसका मतलब उसका पूरा दिन जो था वो प्रार्थना में ही बीतता था, बीच में वो कब काम कर लेती थी, लेकिन सुबह और दोपहर को और शाम को पूरी समय वो उन मरीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। अगर वो भगवान के लिए उनके लिए प्रार्थना नहीं भी करती तो कुछ नुकसान नहीं होगा, उसका काम तो अच्छी तरह कर रही है, उसके काम में कोई कमी नहीं है, अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है वो, कोई काम में गलती नहीं करती है, जो दवा देनी है बराबर देती है, जो बताया गया बराबर करती थी वो। लेकिन जब प्रेम होता है मन में, जब किसी व्यक्ति का भगवान से संबंध होता है तो उसके मन में करुणा और प्रेम जागृत होता है, और वो उसके आगे जाकर उसको प्रार्थना करने की तनख्वाह नहीं मिलती थी उसको, और ना किसी को बताती भी थी कि मैं इतना घंटा प्रार्थना करती हूँ, जो पैसा लगाओ पैसा निकालो, तुम्हारे 2 घंटा प्रार्थना किया मैंने, चलो पैसा निकालो, ऐसा नहीं करती थी। सुबह दोपहर को शाम को काम करते वक्त और काम नहीं करते वक्त वो केवल भगवान से प्रार्थना करती थी उन मरीजों के लिए, उनके कल्याण के लिए। ऐसी सेवा करने से भगवान की कृपा होती है, ऐसी सेवा करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इट इज सेड इन इंग्लिश दैट वर्किंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, केवल तनख्वाह के लिए या डर के मारे या ड्यूटी है इसलिए, इसके आगे जाकर जो काम करता है ना, ध्येयवादी बोलते हैं इसको, तो किसी उच्च ध्येय के लिए काम करता है, क्योंकि पगार के लिए दुनिया काम करती है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो जब मालिक आते तब काम करते हैं, मालिक गया तो सो जाते, मालिक को दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन सेवा का भाव का मतलब वो है कि जो करने से मालिक नहीं, सबसे बड़ा मालिक वो प्रसन्न हो जाता है, और सबसे बड़ा मालिक जो प्रसन्न होता है तो यहां का मालिक जो है वो प्रसन्न हो जाता है। वो काम वैसे करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए और कर्तव्य से आगे हटकर करना चाहिए, उसको करते हुए अगर कोई कष्ट भी होता है उसको सहते हुए करना चाहिए। ऐसा है कि माँ को जब रात को नींद नहीं मिलती तो माँ को बड़ी खुशी होती है, ऐसा है उसको भी नींद की जरूरत है, लेकिन अपनी नींद को त्याग करके वो बालक की तट्टी पेशाब और पट्टी लगाते रहते हैं उसको बुखार के लिए, तो असुविधा तो झेल रहे हैं वो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि केवल सुविधा सुविधा है सब जगह पर, प्रेम का मतलब असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है, असुविधाएं भी कष्ट झेलना पड़ता है प्रेम के कारण, नहीं तो हम लोग सब लोग बड़े होते ही नहीं आज तक, हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं बड़े होकर उम्र की उम्र लेकर बैठे हैं, बड़ा शरीर अपना हो गया है, ये क्यों हुआ है, हमारी माता नाम के व्यक्ति ने हमारे लिए अनंत असुविधाओं को स्वीकार किया है, अनंत कष्टों को झेला है, खुद की परेशानी को परेशानी ना मानकर अपने हमारे लिए अपनी देखभाल की है, तब जाकर हम अभी यहां पर बैठे हुए हैं, और आज हमको उनकी जरूरत नहीं है जैसे तब जरूरत थी, लेकिन उन्होंने किया था हमारे लिए इसलिए हम आज बड़े होकर यहां बैठे। तो हमारा जीवन जो है वो भी निस्वार्थ किसी की निस्वार्थ सेवा के नींव पर बसा हुआ है, इसलिए क्या कहूं, हम सबका जीवन आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी नींव किसमें है, किसी ने की हुई निस्वार्थ सेवा जो है वो इसके पीछे है। तो उसकी याद करते हुए क्यों ना हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें, क्योंकि हमारी कोई भी योग्यता न होते हुए, ना हमने माँ को तनख्वाह दी थी उस समय, ना पहले से पैसे की व्यवस्था करके माँ के लिए हम आए थे, हमने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी हमारे लिए निस्वार्थ सेवा की गई माता जी की तरफ से। तो हमने आते ही इस जीवन में निस्वार्थ सेवा को लिया है किसी के, इज दैट राइट? इसलिए दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उस माता पिताओं का बुढ़ापे में सेवा करना हमारा फर्ज है। वो तो हमारा रिटर्न क्यों है? क्योंकि पहले हमने लिया था उनका सेवा। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो कोई बड़ा बात नहीं हो रही है, वो तो जो लिया था वो दे रहेगा बस। लेकिन माता ने बिना कुछ लिया आपसे आपको दिया था, है कि नहीं? इसलिए जो निस्वार्थ सेवा करता है वो माता के समान होता है। इसलिए नर्स को सातवीं माता बताया गया है, क्योंकि वो भी निस्वार्थ सेवा करती है मरीज की। और हम भी वैसे माता के समान मरीज की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। ये जो उत्तरदायित्व है ना हमारे ऊपर, माता का, पिता का, समाज का, देवताओं का, ये सब ऋण जो है वो तब उतर सकता है जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे। निस्वार्थ सेवा करने वाले का व्यक्ति का सारा कर्म बंधन छूट जाता है। लाभ के हेतु या कर्तव्य के हेतु काम नहीं करता है। इसलिए चाहे हम इस हॉस्पिस में काम कर रहे हो या और कहीं काम कर रहे हो, क्या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, हमको इस भावना से काम करना है। आजू बाजू के लोग कैसे भी हों, क्योंकि हमें अपना हिसाब देना है, बाकी लोगों का हिसाब को पूछते नहीं। जब मृत्यु होती ना तो मुझे खाली मेरा हिसाब पूछेंगे, आपका हिसाब नहीं पूछेंगे, और आपको खाली आपका हिसाब पूछेंगे, मेरा हिसाब नहीं पूछेंगे। तो एंड में जब यमराज के सामने खड़ा होना होता है तो किसका हिसाब पूछते हैं? वो पूछते हैं केवल हमारा। और हम क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोग ऐसे बैठते थे, हम इस समय बैठता हूं। हम लोग ऐसे बोलते थे क्या, अरे वो हमारे ऑफिस में तो कोई काम ही नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं? ऐसे होता है कई जगह पे, गवर्नमेंट लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि ऊपर से लेकर तक कोई काम नहीं करता है, इसलिए जो नया आते हैं वो भी काम नहीं करते। लेकिन एंड में हर व्यक्ति को खुद का हिसाब देना पड़ता है। यमराज हमने ऐसा कर सकते नहीं, अरे वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई काम ही नहीं करता, इसलिए मैंने भी नहीं किया, तो यमदूत उसको फटका लगाएंगे अच्छी तरह से। दूसरा गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा उसको फटका लगाएंगे, और चौथा आएगा उसको फटका लगाएंगे, सबको दंड मिलेगा उसका। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ये जानता है कि मुझे मेरा हिसाब किताब देना है, इसलिए मैं प्रामाणिक होना चाहिए, मुझे प्रामाणिक होना चाहिए और मुझे निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए बस। और जो सेवा होती है उसकी तनख्वाह लाभ तो मिलता ही है, कभी भी कोई भी सेवा खाली जाती नहीं है, आशीर्वाद तो जरूर मिलता ही है, अगर पैसा नहीं मिलता हुआ तो। हर एक सेवा का लाभ होता ही है जीव को, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सेवक होता है वो किसी भी लाभ के हेतु सेवा नहीं करता है, उसको अपने आप लाभ मिलते रहता है बिना मांगे। उल्टा ऐसे कहा गया है, जो मांगता है उसे कम मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको ज्यादा मिलता है। समझो पंडा लोग आप गए, नंदगांव गए, बरसाने गए, आते ही पंडा ने आपने नोचना आरंभ किया तो आपको 10 देने का दिल था तो आप उसको 5 देंगे, आपको 100 देने का दिल था तो आप उसको 25 ही देंगे। लेकिन अगर पंडा आया, आपको दर्शन कराया, उसने बड़े प्रेम से दर्शन कराया और भोजन भी खिलाया, बैठिए आप, तो 100 देने वाले होंगे 200 निकाल के देंगे उसको। हाँ, सोचो उस बारे में। जो मांगते हैं उन्हें कम मिलता है, जो नहीं मांगते हैं उनको ज्यादा मिलता है। यह सेवा का रहस्य है। इसलिए हम सेवा करेंगे तो भगवान की तरफ से उनको ज्यादा मिलेगा। और यह सोचकर भी नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं मांग रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए, ऐसे भी सोचना नहीं चाहिए। सेवक को केवल सेवा करते रहना चाहिए बस। और वो जैसे पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है चित्रगुप्त के द्वारा, यमराज के सेवकों के द्वारा, वैसे सेवा का भी हिसाब अलग से रखा जाता है और उसका मेवा अलग से मिलता है, ध्यान रहना। और सारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो मैंने आपको समझाया, पूरा लाइन से समझाया, इसके बाद क्या, 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 लेकिन शुरुआत में सेवा, महात्माओं की सेवा, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ ऋषि बना। ये सेवा से सब कुछ आरंभ होता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भगवान के साथ में मिलान होता है। हम कौन है, भगवान कौन है, इसकी जानकारी हो जाती है। वो जानकारी करने के लिए हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, याद रखना। मनुष्य शरीर में आकर हाँ भ्रष्टाचार करने के लिए हम नहीं आए, अधिक बुद्धि प्राप्त करके अधिक भ्रष्टाचार करने के लिए हम लोग नहीं आए, दूसरे का धन छीनने के लिए नहीं आए, दूसरे की वस्तु को अपनी मानकर भोग लेने के लिए नहीं आए, अपने लिए अलग ट्रीटमेंट और बाकी लोगों के लिए अत्याचार करने के लिए नहीं आए। हम आए हैं ये समझने के लिए कि हम कौन है, मनुष्य बनकर आए हैं ये समझने के लिए हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है और उसको कैसे जोड़ना है, ये समझने के लिए हम आए हैं। इसके लिए सेवा आवश्यक है, नहीं तो क्या है, अपना अपना करके जो निकल जाता है वो अपने अपने में सीमित रहता है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और जो अपने के दायरे से अपने स्वार्थी दायरे स्वार्थी के स्वार्थी निजी हिसाब के बाहर जाकर जो काम करता है उसी की ओर भगवान का ध्यान आकर्षित होता है। स्वार्थी को कमी नहीं है लेकिन निस्वार्थ आदमी कोई विरला होता है और उसी को भगवान मिल जाते हैं। ये तो ब्रज भूमि है, यहां पहुंचना भी मुश्किल है। यहां पहुंचने के बाद में अगर कोई अगर स्वार्थी कार्य करता है तो भयंकर अपराधी होता है, भयंकर अपराधी होता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं कि ये भूमि में जो अपराध होते हैं वो कितने भयंकर होते हैं। एक जगह है ब्रज में, उसका नाम है रणवारी। आप मुझे कितने लोग जानते हैं रणवारी को, जानते हैं रणवारी छाता के पास में, उस जगह में बहुत लंबी कथा है बाद में बताएंगे कभी, लेकिन कामदेव को भगवान ने वहां परास्त किया था। एक यहां पर भी है मदन टेर, और वहां पर तो युद्ध हुआ था, वहां पर भगवान ने कामदेव को परास्त कर दिया था। और परास्त हो गए, कामदेव को आदेश दिया था कि यहां पर किसी पर प्रभाव न करना। आज भी उस जगह का महात्म्य ऐसा है कि रणवारी में जो जाते हैं उन पर काम का प्रभाव नहीं होता है, काम वासना उस पर प्रभाव नहीं करती है, मुक्त हो जाते हैं जब तक वहां पर है तब तक। तो एक भक्त वहां पर आया कृष्णदास, उसके गुरु ने कहा उसको कि तुम्हें अगर काम से मुक्त होना है तुम रणवारी जाओ। तो रणवारी गया, बिल्कुल विरक्त भाव हो गया। इतना भजन किया उसने उस जगह की महात्मा की वजह से, उस जगह के ऊपर उसके मन में काम का प्रभाव नहीं हुआ, भजन अच्छा हो गया उसका। इतना भजन अच्छा हो गया कि राधा रानी का उसको साक्षात्कार हुआ, रोज का संवाद बातचीत होने लगी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो द्वारका चलते हैं, ऐसा नहीं सोच रहे अमरीका चलते हैं या पिक्चर चलते हैं, ऐसा विचार मन में है। द्वारका भगवान का स्थान है। तो राधा रानी साक्षात्कार में बोली कि द्वारका मत जाओ। फिर भी वो आज्ञा पालन ना करते हुए द्वारका चला गया और वहां जाके बहुत दुखी हो गया, बहुत व्याकुल हो गया। दोबारा लौट के आया, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ उसको जो पहले होता था, और उसके पैर से अग्नि निकली और वो जल गया। ये दृश्य जो है कि वो जल रहा था, ये जो हमारी लास्ट फोटोग्राफ है ना, जो एकदम बहुत बूढ़े आचार्य बैठे हुए, छह गोस्वामी का चित्र पड़े ना, उसके बाजू में जो बैठे है ना एकदम बूढ़े से, उनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी। उन्होंने उस व्यक्ति को उसके पैर से अग्नि निकलते हुए जलते हुए देखा, जलकर भस्म हो गया वो व्यक्ति। तब जगन्नाथ दास बाबा जी जो है तुरंत ब्रज से निकल के नवद्वीप धाम चले गए। क्यों बोलता है, बहुत भयंकर जगह है, अगर पुण्य किया अच्छा सेवा किया बहुत लाभ होगा, एक अपराध किया तो इतना दंड मिलेगा कि कह नहीं सकते, उसको डर गए हो। और सीधे मायापुर नवद में चले गए और वहां पर शरीर छोड़ दिया। तो वृंदावन धाम ब्रजभूमि जो है इसके अंदर जो भगवान का नाम लेता है तो उसको एक लक्ष्य गुना लाभ होता है। बंबई में लिया और यहां लिया, इसमें एक लक्ष्य गुना लाभ होता है। मतलब यहां एक माला की तो बंबई में एक लक्ष्य माला करने के बराबर है। लेकिन यहां पर कोई अपराध किया तो उसका एक लक्ष्य बाहर परिणाम होता है उसका, तलवार की धार की तरह है बहुत डेंजरस है। इसलिए हमको लगता है कि अरे क्या है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहां जो जो आप करते हो उसका एक एक लक्ष्य गुना हिसाब रखा जाता है। आपने एक अच्छा काम किया, एक लक्ष्य अच्छे काम का हिसाब रखा जाएगा। एक बुरा काम किया, एक अपराध किया, एक लक्ष्य बार अपराध का हिसाब रखा जाएगा। बहुत भयंकर हिसाब किताब है यहां का। इससे सबको सावधान रहना चाहिए। यहां पर कोई कर्तव्य करने में हम चुके तो उसका परिणाम भी एक लक्ष्य बार होगा, और कोई निस्वार्थ सेवा किया उसका भी 1,00,000 बार नाम होगा। हर चीज का लाभ 1,00,000 बार होगा, अनंत लक्ष्य बार होगा, भूमि का परिणाम है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जो है वो परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उसके हाथ से गलतियां भी होती रहती है। अगर वो अच्छे संग में नहीं है तो गलतियां करता है, और एक गलती का हिसाब 1,00,000 1,00,000 गलती के हिसाब में रखा जाएगा। किसी को आपने दुखाया है, किसी के बारे में किसी को बुरा भला कहा है, किसी को दिल दुखाया है बुरे शब्द से अपशब्द कर उच्चारण करके, तो उस एक घटना का आपके खिलाफ 1,00,000 बार हिसाब रखा जाएगा। सोचो आप, ये भूमि जो है आपको अनंत लाभ देने वाली है, लेकिन अच्छा काम करते रहोगे तब तक। एक बुरा काम हो गया तो उसका 1,00,000 बार नुकसान होगा हमारा। तो ब्रज भूमि साक्षात राधा कृष्ण है, साक्षात राधा कृष्ण की भूमि में रहते हुए अपराध जो है बहुत भयंकर होता है। एक बार हम पाप करके मुक्त हो सकते हैं, पाप से हम माफी ले सकते हैं, लेकिन पाप और अपराध दो भिन्न वस्तु है। अपराध जो है भगवान के हृदय को क्या कहते हैं उसको, ठेस पहुंचाती है। भगवान खास करके उसके भगवान के भक्त के खिलाफ कोई अपराध करता है बहुत भयंकर ठेस भगवान को पहुंचती है। भक्तों को तो बात अलग है, उसके पहले भगवान को ठेस पड़ती है। जैसे अगर किसी बालक को आप मारते हो दमाचा तो गुस्सा किसको आता है, मां को आता है, बालक को भी आता है, लेकिन उससे कई गुना अधिक गुस्सा किसको आता है, उसकी मां को आता है। एक कुत्ते के पिल्लों का आपको कष्ट दो तो सबसे अधिक गुस्सा तो किसको आता है, उसकी माता को आता है। जब बंदर के पिल्ले को अच्छा देखो आप तो देखो बंदरिया घुस के अपने यहां बुरा दी, उसके आपने कुछ नहीं किया है, अरे बच्चे को देखा था आपने। यही हिसाब किताब भगवान का है। भगवान के भक्त का हमने अपराध करते हैं तो भगवान के भक्त के पहले भगवान को ठेस पहुंचती है और सब मामला उधर बिगड़ जाता है। इसलिए हम सबको इस धाम में रहते हुए सावधान रहना चाहिए। आपको अगर सुख नहीं देना चलेगा, लेकिन आपको दुख नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और धाम साक्षात भगवान होने के नाते हमें भगवान का परिचय करा दे सकता है, लेकिन अगर समझेंगे नहीं, पहले हिसाब किताब करते रहेंगे, कोई लिखा पढ़ी करते रहेंगे, हाँ केवल लाभ देखते रहेंगे, नौकरी करके ले लेंगे, तो हमारा बंबई में जीना और यहां जीना में कोई अंतर नहीं, अमेरिका में जीना, लंदन में जीना, श्रीलंका में जीना और यहां जीने में कोई अंतर नहीं। क्योंकि चेतना जो है ना, वो भावना जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो भावना हमको कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर भावना हमारी सही है तो हम लंदन में भी होंगे तो हम ब्रज में रहेंगे, और हम ब्रज में रहेंगे भावना गलत है तो यहां रहेंगे हम लंदन में रहेंगे। हमारी चेतना जो है हमारा गंतव्य स्थान निश्चित कर देती है, इसलिए उस चेतना को सुधारना चाहिए। उसी के लिए हमको हरिनाम महामंत्र दिया है जो चेतना को सुधारता है, चेतना को पवित्र कर देता है, और यही चेतना हमको भगवान को मिला देती है। यही भावना जो है वो भगवान से हमको जोड़ देती है, और वो भावना अगर सही नहीं है तो सब कुछ होने पर सब कुछ व्यर्थ है। और ये भावना सही जगह पर है, गरीब से गरीब आदमी भी सही जगह पर है, सही वस्तु को प्राप्त करेगा। यही ब्रजभूमि की सीख है, यही शिक्षा हमको यहां प्राप्त करनी चाहिए। और ब्रजभूमि में रहकर अगर हम किसी संत की सेवा कर रहे हैं, वो भी उसको बहुत जरूरत थी उस समय कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि महाराज जी क्या सेवा करें क्या सेवा करें, नहीं बाबा कुछ सेवा की जरूरत नहीं, अब कर लाओ भजन करो। ये महाराज जी बोल रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, दवा दो, पीड़ा हो रही है मुझे, उसकी जरूरत के समय अगर किसी महात्मा की अगर धाम में सेवा मिलती है, उससे बड़ा जीव का कोई भाग्य नहीं होता है। तो कोई संत आके सेवा लेता है आपसे, मांग के लेता है तो उतनी बड़ी भाग्य की क्या बात है। जीव का परम सौभाग्य है ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको पैसे के दायरे में गिनते रहते हैं, नौकरी के दायरे में, अरे 5 बज गया अभी मेरा, ड्यूटी हो गया खत्म। ये करने से क्या होता है, जो हमको अनन्य लाभ मिल रहा है वो हम खो बैठते हैं उसके। इसलिए श्रीमद् भागवत के ज्ञान में, श्रीमद् भागवत के पठन में सब हम समझ जाते हैं। तो आखिर ज्ञान की व्याख्या क्या है, संक्षेप में बताया जाए तो कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, जो गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, दुबला है, लंबे बाल वाला है, कम बाल वाला है, सफेद बाल वाला है, गोल बाल वाला है, ये शरीर हम नहीं है, हम कुछ अलग वस्तु है। पहली स्टेप है ज्ञान की। दूसरी स्टेप है कि ये जो वस्तु है वो आत्मा है, जो हम है, और वो आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। ये तीसरी स्टेप हो गई। और चौथी स्टेप है हुई कि भक्ति पूर्ण सेवा करना, यही एकमेव माध्यम है आत्मा को भगवान से जोड़ने का, जिसका हम अंश है उसके साथ जुड़ जाने का केवल सेवा, यही माध्यम है, यही ज्ञान है बस। बाकी पीएचडी एमडी कुछ नहीं है, सब बेकार है। अगर जन्म मृत्यु से तरना है तो यही ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए बस, और इसके लिए जीवन जीना है, इसके लिए मनुष्य जीवन हमको दिया गया है और इसी के लिए जीना है। बाकी सब हमारा लौकिक कर्तव्य है, केवल शरीर को चलाने के लिए कोई नौकरी कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे उत्पन्न कर रहा है, ये सब लौकिक बातें हैं, संसार की बातें। लेकिन मेन बिजनेस जो हमारा है ये पता करना है कि हम कौन है। बाकी सब कर्तव्य जो है होते रहेंगे, प्रपंच जो है होते रहेगा, वो कभी रुकता नहीं है कभी, लेकिन ये काम खुद को करना पड़ता है, समय निकाल कर, याद रखकर करना पड़ता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का?
हमको यहाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में रहते हैं तो यहाँ तो वातावरण जो है थोड़ा गरज ज्यादा नीचे का स्तर पे रहते हैं, इसमें कैसा फील कर सकते हैं? और हम जो सेवा प्रदत है लोगों को वैष्णव की, तो लोग जाने वाले क्यों इनके सेवा करते हैं, क्या हॉस्पिटल है
इसमें आप क्या रहते हैं, यहाँ पर क्या लोग रहता है, हम समझा नहीं,
वातावरण है ना।
हाँ,
लोग
दुखी रहते हैं।
हाँ यार, तो हम बोलते लोगों को भक्ति करो, भगवान का याद करो, तो ज्यादा लोग पीड़ित रहते हैं।
हाँ,
यहाँ कैसे उनको उच्च चेतना में ला
सकते? सबसे पहले हमारी साधना जो है वो हमको अच्छी करना चाहिए, सबसे पहले। हाँ, हमारी जो थैली है ना वो भरी होनी चाहिए भजन से। जब हमारी थैली भजन से भरी हुई है तो दूसरों को हम कुछ दे सकते हैं सेवा के माध्यम से। अगर हमारी थैली सूखी हुई है, पूरी शुष्क है, दूसरों को हम क्या दे सकते? इसलिए सबसे पहले जो यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो या और कोई व्यक्ति हो, सबसे पहले उनको भजन करना चाहिए अपने घर पे, अपने स्तर पर। जब आध्यात्मिक शक्ति खुद बटोरेंगे तो जाकर यहाँ पर किसी की सेवा कर सकते, नहीं तो केवल नौकरी है वो, उसमें कोई मतलब नहीं। और नौकरी करने में कोई पाप नहीं है, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोगों को नौकरी से ऊपर उठने का मौका है वो लेने की बात कर रहा हूं खाली। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को जो ब्रज में रहता है उसको भजन करना चाहिए। फिर जब यहां पर आएंगे तो मरीजों को सेवा करते समय हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो उनको मिल सकती है। और आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा एक स्वभाव है कि किसी को देने से वो कम नहीं होती है। जैसे हमारे 50 रुपए, आपको 25 दे दिए तो मेरे पास कितने बचे? 25 ही बचे। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा होता है कि हमारे पास 50 है, आपको 25 दिया तो मेरा 50 रहेगा, आपको 25 हो जाएगा। ये गणित अलग होता है। इसलिए भजन करने से, भजन की लाभ दूसरों को देने से अपना भजन कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। क्या मेरा देव बोलती है, मेरा देव क्या बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त जाए, कभी कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है। तो खुद को पहले बड़ा पटोरना चाहिए। हम लोग जब करते हैं तो इधर देखते हैं, कभी कभी कथा समाप्त होगी तब प्रसाद मिलेगा, इतनी माला और करनी पड़ेगी। ऐसा अगर भाव से जब करेंगे तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे बताओ? तो अगर यहां के कष्ट पाने वाले, शरीर के कष्ट पाने वाले लोगों को अगर हमको कुछ शक्ति देनी है तो हमको भजन करना पड़ेगा पहले। ये कोई मैकेनिकल वस्तु नहीं है, कोई ऐसा बटन दबाया तो दुख कम हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बटन दुनिया में नहीं है तो दबाने से तुरंत दुख कम हो जाती है, खुशी आ जाती है। ऐसा कोई बटन है क्या आपके पास? सबको बटन चाहिए, वो सब खरीदेंगे उस बटन को, चलाने से तुरंत खुशी आने लगेगी और दुख गायब हो जाएंगे। सब हॉस्पिटल लगा देंगे हर बटन हर कमरे में, वहां तेल लगा दो बटन, ऐसा नहीं होता है। ये हृदय से हृदय को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो अगर आपको किसी की वस्तु का दुख नहीं होना है, किसी के लिए तड़पना नहीं है आपको, तो आपको ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होना पड़ेगा। जब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे तभी किसी वस्तु के खोने पर हम नहीं रोएंगे, तो कोई वस्तु नहीं मिल रही है इसके लिए नहीं रोएंगे। अगर मरीजों को दुख से मुक्त करना है तो पहले हमको ये जो बताया ना आनंद की स्थिति को हमको प्राप्त करना चाहिए। अगर हमको तावाना परेशान है तो दुखी मरीज की क्या सेवा करेंगे? इसलिए असली आनंद का रहस्य केवल भजन है भगवान का, और वो पर्याप्त मात्रा में आत्मा को संपृक्त करने तक करना चाहिए, आत्मा को डूबना चाहिए उसके अंदर। उस अवस्था में जब तुम मरीज के पास जाओगे तो आपको मिलते ही उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। शरीर कष्ट देगा उसका, आत्मा में आनंद फैलेगा उसके। आप अनुभव करके देखो, जब आप भगवान की प्रीति में आनंद ले रहे हो तो आपको मिलने से किसी भी दुखी व्यक्ति को तुरंत आनंद हो जाता है। और आपका हृदय दुख से भरा हो तो आपको मिलते ही सबको दुख हो जाता है, जो खुश होगा तो भी दुख हो जाता है उसको, होता है ना ऐसे? सुबह पहले मिलते जो लटका हुआ चेहरा देखा तो हम तो खुशी से आ रहे थे, आपका लटका देख के हम भी लटक जाएंगे तुरंत। जैसे खुशी वो है ना संसर्ग जन्य है, संपर्क से खुशी फैल जाती है, ऐसे दुख भी फैल जाता है। खुशबू जो है संपर्क से फैल जाती है, बदबू भी संपर्क से फैल जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति की खुशबू जो है पहले हृदय में ग्रहण करो, फिर जिसको भी मिलेंगे आप वही उस खुशबू का ग्रहण आनंद लेंगे। अगर मैं यहां पर 10 गुलाब लेकर बैठा हूं सुगंधी गुलाब, तो उसकी जो खुशबू है वो छिप नहीं सकती, सब कमरे में फैल जाएगी। उस तरह से जिसके हृदय में भगवान की प्रीति का भक्ति का आनंद है उसको मिलने से वो खुशबू छिप नहीं सकती, सबको मिलेगी, थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो लेकिन जरूर मिलेगी। और वो है महात्मा जिसकी सेवा हमको करने का वर्णन हमने किया था, उसकी सेवा करने से वो खुशबू प्राप्त होती है। जो भगवान की खुशबू है वो आपके हृदय में प्रवेश करेगी। इसके लिए निश्चय होना चाहिए, इसके लिए केवल नौकरी के लिए काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए कर्तव्य के दायरे के परे जाना चाहिए। तब जाकर उस व्यक्ति को जो भी इच्छित है जो भी जरूरी है सब मिल जाता है उसको, क्योंकि भगवान देते हैं उसको। उसके पहले केवल जिसके यहां नौकरी कर रहा है वो दे रहा है उसको, जब वो कर्तव्य के दायरे के परे रहता है तो जहां पर नौकरी कर रहा है वहां से तो उसको मिलता ही है, लेकिन भगवान की तरफ से भी मिलता है, दोनों लाभ होता है उसको। इसलिए भगवान की भक्ति और भजन करने में बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि उसको बहुत सारा मिल जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?
भगवान की जो भोग लगता है जो हम बनाते हैं, तो जो मनुष्य को लगता है वही हम अपन को, भगवान को जो धाम है तो भगवान को अच्छा सेवा होना चाहिए, भगवान को फूल होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा फलो है तो हम बना सकते हैं क्या?
बनाना चाहिए, आते ही बोला ना कि आपको जो माला भगवान को पहन कर रखी है वो बिल्कुल अच्छी माला है, बिल्कुल भी अच्छी माला नहीं। मुझे इस माला को पहनने में बहुत शर्म आ रही है, मुझे गुलाब की माला पहनाई आपने, भगवान को गिंदे की माला पहना करके, बिल्कुल गलत बात है। और वो भी किराए से लाना नहीं चाहिए, हाथ से बैठकर उसको बुनना चाहिए, पुजारी का काम वही है, प्रेम से भगवान को। तो माला तो वो इस्कॉन मंदिर के बाहर मिलती है 25 रुपए के अंदर, बनी बनाई माला 25 रुपए फेंको ले आओ माला, ऐसा नहीं है। वो 25 रुपए का फूल लेके आओ, उसको अपने हाथ से बुनो और फिर भगवान को पहनाओ, वो भगवान स्वीकार करते हैं। 25 रुपया सबके पास है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। भजन का मतलब क्या? अल्टीमेटली जो हृदय से होता है वो भजन होता है, जो कर्तव्य के दायरे में होता है, जो लाभ के दायरे में होता है वो भजन नहीं होता है। भजन वो है वो हृदय से होता है, प्रेम से होता है। उसको भगवान स्वीकार करते हैं। और समझो गुलाब का फूल नहीं भी रहेगा लेकिन भावना रहेगी ना, तो गुलाब से भी अधिक समझ कर वो स्वीकार करेंगे उसको। हमारे पास भावना की कमी है, सब कुछ नहीं, साधन भगवान ने पर्याप्त जोड़ दिया है, लेकिन हम लोग उसको भावना से जोड़ते नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे दुखी रहते हैं हमेशा। ठीक है, जय जय श्री राधे।